पाठ 27 अध्याय 22, 23 और 24। तो पिछले सप्ताह हमने बालाम और बालाक की कहानी से शुरुआत की थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने में गिनती के तीन पूरे अध्याय 22, 23, 24 लगते हैं, और हम इसके समय, संरचना और शैली से देखते हैं कि यह लगभग निश्चित रूप से एक वास्तविक घटना का अलंकृत विवरण है, एक बहुत ही वास्तविक घटना का विवरण जिसने इब्रानियों के बीच दंत कथाएं का दर्जा प्राप्त किया। और यह सब कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों को समझाने के उद्देश्य से है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं इसे एक अलंकृत कहानी कहता हूं, यह कोई परी कथा नहीं है और न ही यह किसी की कल्पना से आई है, लेकिन इसमें कहानी को यादगार बनाने के लिए कुछ तत्व जोड़े गए हैं और इस तरह इसे मुंह से कान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि इसमें एक लोक विषय है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाइबल में केवल दो स्थानों पर ही जानवरों को आवाज दी गई है, उत्पत्ति में सर्प और गिनती की पुस्तक में गधा, और ये दोनों आकृतियां अपने स्वभाव में इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती। सर्प स्वयं शैतान था और कोई साधारण प्राणी या सामान्य सर्प नहीं था जो दुष्ट के वश में हो गया था, बल्कि यह स्पष्ट किया गया है कि उत्पत्ति का यह सर्प एक बिल्कुल अनोखा प्राणी था और मैदान का कोई भी प्राणी शैतानी सर्प के बराबर नहीं था। दूसरी ओर बालाम के गधे का ऐसा कोई आध्यात्मिक संबंध या दर्जा नहीं था, न ही यह किसी विशेष दिव्य रचना का उत्पाद था। यह बस एक सामान्य गधा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बोलता था, और बालाम इससे बहुत प्रभावित या आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मेरा मानना है कि यह कहानी के प्रमुख तत्वों में से एक है जो हमें यह पहचानने में मदद करता है कि समय के साथ बालाम और बालाक और इसराइल से जुड़ी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं अतिरंजित हो गईं और अंततः उनकी कहानियों और परंपराओं में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बोलने वाले जानवरों के मानक मध्य पूर्वी उपयोग के आगे झुक गईं। दूसरे शब्दों में यह बाइबल में प्रयुक्त साहित्यिक उपकरणों का एक और प्रकार कई प्रकारों में से है, लेकिन हमें इसे इब्रानी लोगों की तरह ही धर्मशास्त्र आधारित इब्रानी दंत कथा के रूप में पहचानना चाहिए। मैं आपको इस कहानी की प्रकृति के बारे में जो बता रहा हूं वह विवादास्पद नहीं है। प्राचीन और आधुनिक बाइबल विद्वान इस मामले पर आम तौर पर सहमत हैं। इस कथा में बालाक मोआब का वर्तमान राजा है और बालाम एक गैर यहूदी भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता है जो पश्चिमी मेसोपोटामिया में रहता है, एक ऐसी जगह जो आधुनिक सीरिया और तुर्की के बीच की सीमा पर शक्तिशाली फरात नदी के किनारे है। राजा बालाक के पास अपने क्षेत्र की दहलीज पर 3 मिलियन इसराइली हैं और उन्हें चिंता है कि अगर इसराइल के इरादे शत्रुतापूर्ण रहे तो उनकी सेना उनके राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसलिए बालाक उसके लिए एक बहुत ही सामान्य और सामान्य काम करता है, युग। वह अपनी मदद के लिए एक पेशेवर जादूगर को काम पर रखता है। जीत की कुंजी, बालाक का मानना है, देवताओं को बालाक और मोआब के पक्ष में लाना और इसराइल के खिलाफ लड़ना है। बाइबल के शब्दों में बालाक चाहता है कि कोई इसराइल पर श्राप डाले ताकि वे पराजित हो सकें। इसराइल को श्राप देने के लिए राजा ने बालाम नामक एक प्रसिद्ध दृष्टा को चुना, किराए पर बंदूक। हालांकि यह कहानी ऐतिहासिक कम और इब्रानी दंतकथा ज्यादा है, लेकिन इसमें मौजूद धर्मशास्त्र और भविष्यवाणी की मात्रा आश्चर्यजनक है। जैसा कि हम देखेंगे, इसमें मसीहाई चमत्कारिक संकेत भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमने अपने पिछले पाठ में सबसे पहले खोजा था वह यह था, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर द्वारा उसके लिए भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रभु के सामने धार्मिक स्थिति में है। परमेश्वर ने अतीत में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मूर्ति पूजक राजाओं और भविष्यवक्ताओं का उपयोग किया है और वह फिर से ऐसा करेगा। यहोवा ने मूर्ति पूजकों से सीधा संपर्क किया है और उन्हें कुछ कहने या करने का निर्देश दिया है और उन्होंने आज्ञा का पालन किया है, फिर भी उन्हें न तो छुड़ाया गया, बचाया गया, और न ही उन्हें यहोवा के सामने सही स्थिति में घोषित किया गया है।
इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो झूठा भविष्यवक्ता है कभी कभी सही हो सकता है, उसे कभी कभी स्वयं ईश्वर द्वारा भविष्य का दर्शन दिया जा सकता है ताकि प्रभु कुछ ऐसे अज्ञेय उद्देश्य को प्राप्त कर सके जो केवल उसे ही ज्ञात है। कुछ मायनों में यह एक विश्वासी के लिए यह तय करना और भी मुश्किल बना देता है कि कौन ईश्वर का आदमी है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से अलग रहता है फिर भी बाहरी तौर पर ईश्वर के साथ संगति में दिखता है। काश मैं आपको यह तय करने के लिए एक अच्छी चेकलिस्ट दे पाता, लेकिन मैं सभी अन्य विश्वासियों के साथ एक ही नाव में हूं और इसका मतलब है कि मुझे और आपको ईश्वर के शुद्ध तरीकों को पहचानने में सक्षम होने के लिए ईश्वर के सभी वचनों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अन्य तरीकों के विपरीत जो केवल एक हद तक उसके तरीकों की नकल करते हैं और ताकि हम उनके दिव्य रूप से लिखे गए पैटर्न को पहचान सकें बनाम मनुष्यों के सिद्धांत जो सभी सही शब्दों का उपयोग करते हैं और हमें अच्छी गर्मजोशी भरी भावनाएं देते हैं। याद रखें, हमें बताया गया है कि शैतान अस्तित्व में सबसे दुष्ट प्राणी खुद को प्रकाश के दूत के रूप में छिपा सकता है। इसलिए एक व्यक्ति इतना धोखा खा सकता है कि वह ईमानदारी से विश्वास करता है कि परमेश्वर उसका अभिषेक करते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें दुष्ट द्वारा एक नकली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, या अधिक संभावना है कि उन्होंने अपने स्वयं के आंतरिक दुष्ट झुकाव का पालन किया है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति सभी सही बातें कहता है और परमेश्वर के लिए बोलने का दावा करता है, यह मत मानिए कि वह सही है। यहां उस व्यक्ति के लिए परीक्षण है जो यहोवा का भविष्यवक्ता होने का दावा करता है। यदि वे कभी भी गलत होते हैं तो वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता नहीं हैं। जब मैं इस अर्थ में भविष्यवक्ता का उपयोग करता हूं तो मेरा मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी घटना की भविष्यवाणी कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई है या भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है। इस अर्थ में एक भविष्यवक्ता वह भी है जो कहता है कि परमेश्वर उनके पास आए और उन्हें आपके लिए एक वचन दिया। आज और कभी कभी नए नियम में शब्द भविष्यवक्ता का उपयोग केवल पवित्र शास्त्र के शिक्षक के अर्थ में किया जाता है और मेरा विश्वास करें कि जो कोई भी सिखाता है वह समय समय पर गलतियां करने वाला है, लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ता, विशेष रूप से पुराने नियम के प्रकार के भविष्यवक्ता, एक दृष्टा है जो प्रभु के साथ सही स्थिति में है और जो देखता है, क्योंकि उसे सीधे ईश्वर से संदेश दिया गया है, इसीलिए वह संदेश संभवतः गलत नहीं हो सकता। आइए हम गिनती 22 के एक भाग को पुनः पढ़कर बालाम और बालाक की कहानी को आगे बढ़ाएं। गिनती 22 का 9 से 35 को दोबारा पढ़ें। इब्रानी कहानी कहने के विशिष्ट तरीके में पद 9 में यहोवा ने गैर यहूदी भविष्यवक्ता बालाम से एक अलंकारिक प्रश्न पूछा है। ये लोग तुम्हारे साथ कौन हैं और उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा? बेशक ईश्वर जानता है कि यहां क्या हो रहा है, लेकिन इससे गैर यहूदी भविष्यवक्ता बालाम और इब्रानियों के ईश्वर के बीच एक सीधा संवाद स्थापित होता है। बाइबल में 3 बार यहोवा गैर इब्रानियों के सामने प्रकट होता है ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके कि वे उसके चुने हुए लोगों के साथ जो करने का इरादा रखते हैं वह न करें। 3 बार तोरह में दर्ज है। पहला राजा अबीमेलेक के साथ है जब वह अब्राहम की पत्नी सारा को अपने हरम में ले जाने वाला था, और दूसरा याकूब के मामा लाबान, जो बालाम की तरह मेसोपोटामिया का निवासी है, के साथ था, जो एक दल का नेतृत्व कर रहा था जो याकूब और उसके परिवार का पीछा कर रहा था क्योंकि वे लाबान के नियंत्रण से भाग रहे थे। बालाम ने अपने जीवन के पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटित हुआ है उसे सच्चाई से बताया और बताया कि ये लोग उसके पास आए थे और उसे अपने साथ मिस्र से बाहर आए लोगों की सेना को शाप देने के लिए कहा था, और शाप का अंतिम उद्देश्य यह था कि राजा बालाम इन विदेशियों, जो उसकी सेना से बहुत अधिक गिनती में थे, को युद्ध में हरा सके। लेकिन यहोवा ने मोआब के राजा के इरादे को बालाम से यह कहकर टाल दिया कि वह इन लोगों, इज़राइल को शाप नहीं दे सकता क्योंकि वे धन्य हैं। अब इसका क्या मतलब है कि उन्हें शापित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे धन्य हैं? यह उत्पत्ति और अब्राहम के साथ प्रभु द्वारा की गई वाचा को संदर्भित करता है, जिसे बाद में इसहाक को सौंपा गया था और फिर अंत में याकूब को सौंपा गया, जिसे इज़राइल कहा जाता है। इस वाचा को हमेशा आशीर्वाद कहा जाता है और प्रभु सार रूप में कह रहे हैं, एक आध्यात्मिक अर्थ से जिसे उसने आशीर्वाद दिया है उसे शापित करना पूरी तरह से असंभव है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति यहोवा द्वारा निर्धारित किए गए कार्य को उलट नहीं सकता है। और दो, सांसारिक भौतिक अर्थ से परमेश्वर के लोगों को शाप देने के लिए, उनके धन्य लोगों को बाधित करने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने से शाप देने वाले पर दैवीय प्रतिशोध आएगा। परमेश्वर की सलाह, ऐसा मत करो। हालांकि बालाम का विचार था कि वह इन लोगों के साथ जाएगा, कुछ बकवास करेगा और इसराइलियों को शाप देगा और फिर अपने प्रयासों के लिए ढेर सारा पैसा लेकर घर जाएगा, बालाम कभी भी इधर उधर नहीं घूमेगा और युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। जहां तक हम जानते हैं, बालाम एक हिंसक व्यक्ति नहीं था। बालाम का इसराइलियों को सताने या उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बालाम को एक राजा ने हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, जिसने एक अच्छी कहानी और उससे भी बेहतर पैसे का वादा पेश किया था, और उस समय की नैतिकता के अनुसार बालाम वही करेगा जो उससे कहा जाएगा और फिर जो कुछ भी होगा उससे अपने हाथ धो लेगा, क्योंकि आखिरकार वह एक तरह का भारे का सैनिक था। वह व्यक्तिगत रूप से मोआब का समर्थक या इसराइल का विरोधी नहीं था। इस लड़ाई में उसका कोई हित नहीं था और परिणाम में उसकी कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। वह केवल एक पेशेवर ज्योतिषी के रूप में अपना काम कर रहा था और उसका कोई व्यक्तिगत एजेंडा या, जैसा कि उसने देखा, बुरा इरादा नहीं था। बालाम नैतिक रूप से तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र की तरह। समस्या यह है कि यहोवा के लिए नैतिक तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं है। यह स्थिति मनुष्य की उपजाऊ कल्पनाओं की उपज है। इसके अलावा जो कुछ भी कोई परमेश्वर के लोगों को बाधित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है वह परमेश्वर के प्रति अपराध है, चाहे वह इसमें कोई भी भूमिका क्यों ना निभाए। अब्बा के लिए एक व्यक्ति या तो पक्ष में है या विपक्ष में, जैसा कि यीशु ने कहा, तुम या तो मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ऐसा ही इसराइल को शाप देने के साथ भी है। इसराइल के अछूत आशीर्वाद को स्वीकार न करना परमेश्वर की नजर में इसराइल को सक्रिय रूप से शाप देने के समान है। बालाक सिर्फ बालाक के लिए अपना काम नहीं कर सकता और फिर चले जाएं और खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर लें। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते और यह जानते हुए कि वह निश्चित रूप से एक देवता से मिला था, बालाम ने बालाक द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि, और मैं उद्धृत करता हूं, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा। यह सही है, भले ही हमारी अधिकांश बाइबिलें कहती हैं प्रभु मुझे जाने नहीं देगा, या कुछ ऐसा ही मूल इब्रानी में परमेश्वर का वास्तविक नाम इस्तेमाल किया गया है। प्रभु ने बालाम, एक गैर यहूदी जादूगर, को अपना व्यक्तिगत औपचारिक नाम बताया। लेकिन समझिए, बालाम के लिए इसका मतलब यह नहीं था कि यहोवा उसका एकमात्र देवता था, न ही उसका पारिवारिक देवता, न ही अस्तित्व में एकमात्र देवता। यह सिर्फ इतना है कि यह विशेष देवता, जो कम से कम उन देवताओं में से एक था जिनकी इब्रानियों में रुचि थी, ने बालाम को यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए यह काफी था। लेकिन न तो बुरे इरादे वाले लोग और न ही शैतान अपने प्रलोभनों के साथ हार मान लेते हैं, और न ही परमेश्वर के लोगों को फिर कभी परेशान करने के लिए चले जाते हैं सिर्फ एक बार ठुकराए जाने की वजह से। इसलिए जब राजा बालाक को पता चलता है कि बालाम ने उसके प्रस्ताव को नहीं कहा है, तो वह फिर से कोशिश करता है, और इस बार बालाक उन लोगों से ज्यादा हैसियत वाले निजी प्रतिनिधियों को भेजता है जो पहले गए थे, और वह उनमें से ज्यादा लोगों को भेजता है ताकि बालाम को आने के लिए मनाने की कोशिश कर सके। वे बालाम से कहते हैं कि वे मौद्रिक प्रस्ताव बढ़ा देंगे। बालाम बताते हैं कि यह पैसे का मामला नहीं है, वह सिर्फ अधिक फीस पाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे कहानी में तनाव बढ़ता है, हम पाते हैं कि पर 18 में बालाम यह समझा रहा है कि वह पूरी तरह से, और फिर से मैं मूल इब्रानी को उद्धृत करता हूं, यहोवा मेरे ईश्वर के अधीन है। खैर, इस कहानी को सुनने या इसे पढ़ने और इसका अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि बालाम एक ईश्वर भक्त था, कि वह किसी तरह से यहोवा के प्रति निष्ठा रखता था। फिर भी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और बाइबल की अन्य पुस्तकों में जहां अधिक विवरण जोड़े गए हैं, यह पुष्टि की जाती है कि बालाम केवल एक अध्यात्मवादी है। निश्चित रूप से वह यहोवा में उसी तरह विश्वास करता है जैसे कि कुछ अज्ञात गिनती में अन्य देवताओं में विश्वास करता है। वास्तव में बालाम यहां वास्तव में शेख ही बघार रहा था। वह देवताओं के अदृश्य क्षेत्र में अपनी घनिष्ठता और प्रभाव से मोआब के उच्च सरकारी अधिकारियों के इस प्रतिनिधि मंडल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, और विशेष रूप से उस देवता के साथ जो बालाक की तत्काल समस्या से सबसे अधिक चिंतित था, इसराइलियों का देवता। बालाम एक बहुत अच्छा विक्रेता था। एक अच्छा सेल्समैन होना न केवल अपने ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उन देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण था जिनसे वह अपने पेशे में जुड़ा हुआ था। इसलिए पद 19 में बालाम, जो वास्तव में यह काम और इसके साथ मिलने वाली राजा की फिरौती की कीमत चाहता है, पुरुषों के दूसरे समूह से रात रुकने के लिए कहता है कि वह इस बारे में फिर से परमेश्वर से सलाह लेने जा रहा है। वह कहता है, मुझे पता लगाने दो कि प्रभु और क्या कहेंगे। बालाम को सौदेबाजी की आदत है, उसे देवताओं द्वारा अपना मन बदलने की आदत है। यह यहोवा क्यों अलग होगा? वास्तव में देवताओं के साथ बातचीत करने की यह पूरी प्रक्रिया ही भविष्यवाणी का आधार है। संबंधित देवता के साथ बातचीत तब तक जारी रहती है जब तक कि अपेक्षित शगुन प्राप्त नहीं हो जाता। भविष्यवक्ता का आदर्श वाक्य था, यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं तो फिर से प्रयास करें। इस बात पर भी ध्यान दें कि इस कहानी के पहले भाग में जब परमेश्वर बालाम के पास अप्रत्याशित रूप से आए और किसी तरह से बालाम पूरी तरह से जाग रहा था और सचेत था, तो अब बालाम भविष्यवक्ता के सामान्य तरीके से परमेश्वर को बुलाने की कोशिश करने जा रहा है। एक सपना या एक अचेतन दृष्टि। और दिलचस्प बात यह है कि यहोवा निराश नहीं करता। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि सामान्यतः स्वप्न में प्रभु से कुछ प्राप्त करना परमेश्वर के नियुक्त भविष्यवक्ताओं ने जो अनुभव किया उसकी तुलना में ईश्वरीय प्रेरणा का यह एक निम्नतर तरीका माना जाता था। ऐसा नहीं है कि एक सपना कुछ ऐसा था जिसे तुच्छ समझा जाना चाहिए, लेकिन यह परमानंद और पूरी तरह से सचेत संपर्क के प्रकार की तुलना में फीका था जो यहोवा के भविष्यवक्ताओं ने अनुभव किया, और उस तरह के बहुत कम भविष्यवक्ता थे। जहां तक हम जानते हैं, बाइबल हमें उन लोगों की पूरी सीमा बताती है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। यही कारण है कि मैंने पहले बताया कि भविष्यवक्ता की उपाधि को दो बहुत अलग तरीकों से लागू किया जा सकता है। परमेश्वर के साथ अंतरंगता के दो बहुत अलग स्तरों पर भविष्यवक्ता, जिसे लंबे समय तक परमेश्वर का निजी प्रवक्ता चुना जाता है, जो परमेश्वर से एक सीधा और नया दैवीय संदेश लाता है, और दूसरा प्रकार नया नियम लाइनों के अनुसार अधिक है, जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है और एक हद तक शास्त्रों के लेखकों द्वारा पहले से दी गई बातों की व्याख्या या टिप्पणी प्रदान करता है। मोटे तौर पर कहें तो इस तरह के भविष्यवक्ता एक शिक्षक से अधिक मिलते जुलते हैं। पद 20 में कहा गया है कि परमेश्वर वास्तव में एक सपने में बालाम के पास आया और उससे कहा कि अब मोआब के लोगों के इस दल के साथ जाना ठीक है, यदि वे उससे ऐसा करने के लिए कहें। फिर भी हम जल्दी से पाते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है कि बालाम बालाक के पास जाना चाहता है। यहां हमारे पास मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के भीतर काम करने वाले परमेश्वर का एक स्पष्ट उदाहरण है। बालाम जाने के लिए दृढ़ था। बालाम एक ज्योतिषी था जो सभी ज्योतिषियों का तरीका जानता था, और इसका मतलब था कि जब तक आपको वह नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं, तब तक किसी विशेष देवता से बातचीत करना। आइए इस पर विचार करें। बालाम बालाक के पास क्यों जा रहा था, जबकि परमेश्वर जोर दे रहा था कि बालाक उसे वह काम न करने के लिए नियुक्त कर रहा था?
क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बालाम केवल बालाक को व्यक्तिगत रूप से यह बुरी खबर देना चाहता था कि वह इसराइल को शाप नहीं दे सकता, कि बालाम 200 मील से अधिक की यात्रा करेगा पैदल और कभी कभी गधे की पीठ पर सवार होकर केवल इसीलिए खाली हाथ घर जाने के लिए क्योंकि उसने काम स्वीकार नहीं किया था? शायद ही बालाम ने यहोवा के साथ बातचीत पूरी नहीं की थी। आखिरकार बालाम को अब यहोवा से कम बालाम के पास जाने की अनुमति मिल गई थी। निश्चित रूप से अगला कदम ये होगा कि यहोवा बालाक को इसराइल को शाप देने के मामले में कुछ छूट देगा। मुझे बताओ, क्या हम कभी कभी ऐसा नहीं करते? हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि हम कुछ करें या न करें, लेकिन फिर भी हम अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि यहोवा हमें बीच में ही मार डालने की संभावना नहीं है और अक्सर हम इससे कोई नुकसान नहीं उठाते हैं और जो कुछ भी करने का लक्ष्य रखते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। अन्य समय में चीजें बहुत बुरी तरह से आगे बढ़ती हैं और हमें एहसास होता है कि हमें हमेशा प्रभु की बात माननी चाहिए थी। यह स्वतंत्र इच्छा और इसे ऐसे तरीके से उपयोग करने का प्रभाव है जो ईश्वर के साथ सामंजस्य में नहीं है। तो हम पाते हैं कि बालाम अपनी मादा गधे पर सवार होकर मोआब की ओर जा रहा है, उसके साथ उसके दो सहायक भी हैं। अचानक परमेश्वर यहोवा के एक दूत के रूप में प्रकट होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से बालाम परमेश्वर के दूत को नहीं देख पाता है लेकिन गधे को दिखाई देता है। अब हम बालाम के बारे में कुछ और सीखते हैं। वह आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह अंधा है। वह अपने रास्ते में खरे परमेश्वर के दूत को नहीं देख सकता है जो उसका रास्ता रोक रहा है। उसका गधा जो परमेश्वर को देखता है तलवार चलाने वाले इस भूत से डर कर सड़क से हटकर खेतों में चला जाता है। माना जाता है कि अति आध्यात्मिक बालाम अपने गधे के कार्यों के कारण से पूरी तरह से अनजान है और इसलिए गधे को सड़क पर वापस लाने के लिए उसे पीटता है। कुछ फीट आगे परमेश्वर सड़क के एक बहुत ही संकरे स्थान पर खड़े हो जाते हैं जिसके दोनों ओर बार अर्थात पत्थरों की एक दीवार लगी होती है। डरकर गधा उस भयानक देवदूत की प्रेतात्मा से दूर हटने की कोशिश करता है और ऐसा करते समय वह बालाम के पैर की अपनी पीठ और पत्थर की दीवार के बीच में फंसा लेता है। बालाम अब केवल चिढ़ ही नहीं रहा बल्कि दर्द में भी है, इसलिए वह गधे को और पीटता है उसे अपना पैर छुड़वाने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए। कुछ और कदम आगे बढ़ने पर रास्ता इतना संकरा हो गया कि गधा प्रभु के दूत के चारों ओर नहीं जा सकता था, इसलिए आत्मरक्षा में उसके घुटने मुड़ गए और वह वहीं गिर गया। बालाम पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और उसने अपने बेचारे डरे हुए गधे की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी, जिसने ऐसी परिस्थितियों में वही किया था जो वह कर सकता था। अब मैं आपको बता दूं, अजीबोगरीब व्यवहार करने वाले जानवर सबसे नौसिखिए जादूगरों के लिए भी अपशकुन थे। बालाम ने इस जानवर के व्यवहार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब यह है कि वह वही करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था जो उसने करने का निश्चय किया था। यहोवा की अवज्ञा करना और इसराइल को शाप देकर वह धन प्राप्त करना। मुझे लगता है कि मैं रुक कर आपको इस सब के बारे में कुछ प्यारे किस्से बता सकता हूं और यह हमारे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि अभी हम सभी सोच रहे हैं, वाह, मैंने कितनी बार परमेश्वर के इर्द गिर्द या उनके जरिए जाने की कोशिश की है और इससे दर्द और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। यह फिर से हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है।
अभी भी पूरी तरह से अनजान कि वास्तव में क्या हो रहा था, परमेश्वर गधे को बोलने में सक्षम बनाता है और गधा बालाम से पूछता है कि वह उसे क्यों मार रहा है। दूसरे शब्दों में, अरे मूर्ख, क्या तुम समझ नहीं सकते कि यहां कुछ असाधारण हो रहा है? क्या मैंने पहले कभी इस तरह का व्यवहार किया है?
क्या मैं तुम्हारा अच्छा वफादार सेवक नहीं रहा हूं? और बालाम मानता है कि गधे की बात में दम है। अचानक अब जब यहोवा ने अपने बात करने वाले गधे के माध्यम से बालाम का ध्यान आकर्षित किया तो बालाम ने तलवार के साथ एक भयानक आकृति को अपने सामने खड़ा देखा और इसीलिए बालाम घबराहट और भय से जमीन पर गिर गया। अब जूता दूसरे पैर में है, प्रभु बालाम से पूछता है कि वह अपने गधे के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करता रहता है। वह बताता है कि वास्तव में अगर गधा सही काम नहीं करता तो प्रभु ने उस तलवार का इस्तेमाल गधे पर नहीं बल्कि बालाम पर किया होता।
मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि यह बाइबल के भीतर एक बाइबल है। ठीक है पतियों और पत्नियों, माता पिता और बच्चों, क्या आपने देखा कि अभी क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने कभी कुछ इतना चाहा और दूसरे ने मना कर दिया? आप बस इतना जानते थे कि नई नौकरी लेना भले ही इसका मतलब घर बदलना हो या अपना घर बेचना, भले ही परिवार जहां था वहां खुश था, या नई कार खरीदना, भले ही पुरानी कार में कुछ खास खराबी ना हो, बिल्कुल सही काम था, लेकिन आपका जीवन साथी या माता पिता सहमत नहीं थे और इसने पूरी बात को ही खत्म कर दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बाधा बन जाता है वही सही निर्णय लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसा कुछ होता है तो रुक जाना, और कुछ समय के लिए रुक जाना बुद्धिमानी हो सकती है। रुकें और प्रभु की ओर देखें। हो सकता है कि यह केवल जीवन साथी या माता पिता की प्रतिक्रिया हो जिन्हें बदलाव पसंद नहीं है या जो हमेशा नियंत्रण रखना चाहते हैं, यही समस्या है। या हो सकता है, बस हो सकता है, ये प्रभु उस अरियल व्यक्ति का उपयोग किसी ऐसी चीज को रोकने के लिए कर रहे हैं जिसे वे नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस सब के प्रति पूरी तरह से अंधे हैं और वह आपको या तो एक भयंकर गलती से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे आपकी भागदौड़ और स्वार्थी इच्छाएं स्वीकार नहीं कर सकती, या शायद आप उसके अनुशासन से बचाए जा रहे हैं जिस पर हम में से कुछ लोग विश्वास भी नहीं करना चाहेंगे कि वह इसका उपयोग भी करता है। पद 32 में प्रभु दोहराते हैं कि उन्हें लगता है कि बालाम के पास जाकर बालाक का कार्य घृणित है। बालाम जवाब देता है लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता। वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपको रास्ते में न देखकर बहुत गलत था। मैंने अपने गधे को इतनी बुरी तरह से पीटकर गलत किया। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या आ गया, और अगर आप अभी भी मेरे बालाक के पास जाने से असहमत हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अभी भी असहमत हैं? प्रभु ने अभी अभी उसे बताया कि उसे बालाक के पास जाना अप्रिय लगा। बालाम चापलूसी कर रहा है, वह टेक्सास टू स्टेप कर रहा है, वह गिरगिरा रहा है और चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अरे प्रभु, शायद ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते कि मैं एक नई SUV खरीदूं, बल्कि ऐसा है कि आप नहीं चाहते कि मैं एक नई लाल टोयोटा SUV खरीदूं। क्या नीला बेहतर होगा? शायद एक फोर्ड? ओह, यह वास्तव में हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है ना?
प्रभु, जो स्वतंत्र इच्छा के निर्माता हैं, बालाम को अपनी इच्छा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति देते हैं और इसलिए कहते हैं कि बालाम मोआब में जाना जारी रख सकता है। लेकिन याद रखना, बालाक से एक भी ऐसी बात मत कहना जो मैं तुम्हें कहने के लिए नहीं कहता। बालाम बहुत खुश होता है और वह राजा बालाम से मिलने के लिए निकल पड़ता है।
आइए थोड़ा और पढ़ें, गिनती 22 का 36 को पुनः पूरा पढ़ें।
खैर, राजा बालाक को पता चलता है कि बालाम आ रहा है और वह उसे इसराइल को शाप देने के अपने काम में आगे बढ़ाने के लिए इतना उत्सुक है कि वह बालाम का स्वागत करने के लिए मोआब की उत्तरी सीमा पर जाता है, और जैसा कि कोई शाही व्यक्ति करता है, बालाम बालाक को डांटता है और जानना चाहता है कि उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में इतनी देर क्यों लगाई। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? गधे की घटना के कारण सतर्क बालाम कहता है कि जब तक वह यहां है वह वास्तव में कुछ और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह वही बोले जो परमेश्वर उसे बोलने के लिए कहता है। राजा बालाक अविचलित है, वह इस जादूगर के सम्मान में एक भव्य दावत तैयार करता है जो उसे इसराइलियों से बचाने में मदद करने जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्राचीन मान्यता थी कि यदि कोई दृष्टा और भविष्यवक्ता किसी को शाप देने के लिए सहमत हो जाता है और ऐसा करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाप प्रभावी होगा। शाप देने वाला और शापित होने वाला दोनों ही इसे मानते थे, इसलिए बालाक की चिंता यह नहीं थी कि यह शाप काम करेगा या नहीं, बल्कि यह कि क्या बालाम वास्तव में ऐसा करेगा, यह देखते हुए कि उसका इस बिंदु तक वैसे भी अनिच्छुक रवैया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि बालाक के मध्य पूर्वी दिमाग ने यह समझ लिया था कि यह सब बालाम का कीमत बढ़ाने का तरीका था।
इस प्रसिद्ध मेसोपोटामिया जादूगर के साथ शराब पीने और भोजन करने के उचित प्रोटोकॉल के बाद बालाक बालाम को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है, जहां से वे अपने शिविर में इसराइल के कुछ लोगों को देख सकते थे। जिस स्थान पर वे गए उसे बामोथ बाल कहा जाता था, इसका अर्थ है बाल देवता की वेदी या ऊंचा स्थान। अब उन्होंने उन सभी इब्रानियों को देखने की जिज्ञासा से ऐसा नहीं किया, एक अभिशाप केवल तभी प्रभावी होता है जब शापित व्यक्ति या वस्तु शाप देने वाले की दृष्टि में हो, इसलिए बालाम के लिए सबसे पहले मोआब आना जरूरी था,
अन्यथा बालाम के दूतों को सोने और चांदी से लादकर उसे करकमीश तक ले जाया जा सकता था, जहां बालाम रहता था, और बालाम घर से ही अपना अनुष्ठान कर सकता था। आइए अध्याय 23 पर चलते हैं। गिनती 23 1 से 12 दोबारा पढ़ें। दैवीय गिनती के रूप में गिनती 7 का अत्यधिक महत्व न तो आविष्कार था और न ही एकमात्र इसराइल का प्रांत। यह एक सामान्य गिनती थी जिसे पूरे विश्व में अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता था।
पुराने बेबीलोन युग अब्राहम के समय के आसपास से प्राप्त मिट्टी की पट्टिका से इस छोटे से अंश को सुने। भोर के समय ये शमाश और मर्दुक सभी बेबीलोन के देवता की उपस्थिति में आपको 7 वेदियां स्थापित करनी होंगी, सरू के 7 धूपदान रखने होंगे और 7 भेरों का खून उंडेलना होगा।
एजरा बताते हैं कि इब्रानियों के अनुष्ठान कैलेंडर में गिनती 7 का अक्सर उपयोग किया जाता है। 7 दिन का सप्ताह, 7वां दिन सप्त, 7वां सप्ताह शावोत, 7 वर्ष विश्राम वर्ष, विशेष बाइबल पर्वों के लिए 7वां महीना, तंबू की ओर बछिया के रक्त के 7 छिड़काव इत्यादि इत्यादि। और ऐसा क्यों नहीं होगा कि विशेष महत्व की पंथ गिनती के रूप में गिनती 7 पूरे मध्य पूर्व में आम थी। परमेश्वर ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के समय से ही 7 को एक महत्वपूर्ण पैटर्न के रूप में स्थापित किया था। यह कि मानव जाति ने अपनी पूजा को विकृत कर दिया था, झूठे देवताओं को अपना लिया था और अनुष्ठानों को तौर मरोर कर उनका दुरुपयोग किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे नूह को सिखाई गई और फिर आगे बढ़ाई गई सभी बातों को भूल गए थे। उन्होंने बस इसे अपने धर्मों को गढ़ने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया।
इसलिए अध्याय 23 के आरंभ में जो अनुष्ठान हम पाते हैं वह बालाम जैसे मेसोपोटामिया के जादूगर से अपेक्षित है। 7 वेदियों पर 7 बैलों और 7 मेरहों की बलि दी गई, ठीक वैसे ही जैसा हमने अभी उस प्राचीन मिट्टी की पट्टिका पर पढ़ा। जानवरों के वध के बाद और उनके शवों को वेदियों पर जलाने के बाद बालाम ने राजा बालाक को वेदियों के पास खड़े होने का निर्देश दिया, क्योंकि वह यहोवा से बात करने जा रहा था। बालाम ने प्रभु को बताया कि उसने 7 वेदियों पर बलि चढ़ाई है और स्वाभाविक रूप से प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने निश्चित रूप से ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था। इसके बजाय प्रभु ने बालाम के शांत करने के प्रयास को अनदेखा कर दिया और बालाम को निर्देश दिया कि उसे वापस जाकर राजा बालाक से क्या कहना है। बालाम उस स्थान पर वापस जाता है जहां राजा होमबली के पास खड़ा था, जहां राजा का दरबार उसके साथ कर्तव्य निष्ठा से खड़ा था, और वह घोषणा करता है जिसका बालाक को इंतजार था।
संक्षेप में बालाम कहता है कि भले ही राजा बालाक उसे इसराइल को शाप देने के लिए यहां लाया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पर अलौकिक शाप नहीं लगा सकता जिसे यहोवा ने आशीर्वाद दिया है। हालांकि इससे मोआब के राजा को बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन बालाम इसराइल के लिए एक शानदार भविष्य की भविष्यवाणी करता है। वह मूल रूप से अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे को दोहराता है कि इब्रानियों की गिनती अनगिनत हो जाएगी।
लेकिन कुछ और भी कहा गया है जो संक्षेप में उस बिंदु को स्पष्ट करता है जिस पर हमने इस कक्षा में कई अवसरों पर चर्चा की है। एक इसराइल है और फिर बाकी सभी हैं, या जैसा कि पर 9 में कहा गया है, हां एक ऐसा लोग जो अकेले या अलग रहेंगे और राष्ट्रों में नहीं गिने जाएंगे। समीक्षा करने के लिए यह क्या कहता है कि एक अम्मीम अलग रहेगा और उसे गोडम के बीच नहीं गिना जाएगा। यहां हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। इज़राइल को अब से बाइबल में परमेश्वर के लोग उनके अम्मीम के रूप में संदर्भित किया जाता है, और ग्रह गैर यहूदियों पर अन्य सभी लोगों को राष्ट्र गोइम कहा जाता है। गोइम अब ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ सिर्फ है सामान्य रूप से राष्ट्रों के लिए, अब इसका मतलब विशेष रूप से गैर यहूदी या गैर यहूदी राष्ट्र है। इसमें अब इब्रानी लोग या इब्रानी राष्ट्र शामिल नहीं है।
तो यहां एक गैर यहूदी दृष्टा है जिसे सारी मानव जाति को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि यहोवा की नजर में इसराइल बाकी सभी से बिल्कुल अलग है, गैर यहूदियों से बेहतर नहीं बल्कि गैर यहूदियों से अलग। यहां तक कि इसराइल को एक राष्ट्र कहने की मानक शब्दावली भी अब लागू नहीं होती, क्योंकि प्रभु अपने चुने हुए लोगों को बाकी मानवता से इतना अलग देखता है। इस सब के अलावा बालाम कहता है कि यह उसके लिए और संक्षेप में सारी मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद होगा यदि वे किसी तरह इब्रानी ईश्वर की नजर में धार्मिकता पा सकें और आशीर्वाद के उस ज्ञान में मर सकें।
यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बालाक ने सुनने की उम्मीद की थी, और जाहिर तौर पर निराश और चकित होकर उसने बालाम से कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं तुम्हें अपने दुश्मनों इसराइल को शाप देने के लिए यहां लाया था और इसके बजाय तुमने उन्हें आशीर्वाद दिया है। बालाम ने जवाब दिया, मैं केवल वही कह सकता हूं जो यहोवा मुझसे कहने के लिए कहता है, जब मैं यहां आया था तो मैंने तुमसे यही कहा था। राजा बालाम को लगा कि चतुर बालाक फिर से अपनी चाल चल रहा है, इसलिए उसने बालाम से कहा, चलो एक और पहाड़ी की कोशिश करते हैं जहां से तुम इसराइल को शाप दे सको, शायद इस बार तुम सही साबित हो सको।
चलो यहीं बंद करें और अगले सप्ताह शुरू करें।